नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े कचरों को लेकर पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।